ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के गगन में दादी प्रकाशमणि एक ऐसा सूर्य थी जिन्होंने अपनी तपस्या, अपनी पवित्रता के प्रकाश से विश्व के हर मन को आलोकित किया। खास दादी की तो करुणा कहो, दादी की दया का भाव कहो, दादी का स्नेह कहो, उसमें वो शिव के समान ही थी। दादी इतना लंबा, एक 10 साल की छोटी सी कन्या से इतना विराट आध्यात्मिक उनका जो पथ था, वो इतना निष्पाप और इतना निष्कलंक और इतनी पवित्रता और दिव्यता से संपन्न था कि दादी बड़ी से बड़ी सभा में, चाहे वो शंकराचार्य हों, महामंडलेश्वर हों, राजनीतिक हस्तियां हों, दादी बड़ी से बड़ी सभा पे अथॉरिटी से कहती थी कि ऐसे कोई हाथ उठाओ जिन्होंने बचपन से आज तक कभी झूठ ना बोला हो। और दादी कहती थी कि मैंने बचपन से आज तक कभी झूठ नहीं बोला। ऐसी कौन सी हस्ती है जो भरी सभा में पूछ सकती थी कि किसने मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्रता को धारण किया है? तो दादी कहती थी, प्रैक्टिकल जीवन दादी का माना एक ऐसा विराट व्यक्तित्व, जैसे मैं तो ऐसा समझता हूं कि जो ज्ञान का सागर बाबा है वो भी दादी पे नाच करते थे। बाबा भी हम देखते थे, बाप दादा का मिलन जब होता था तो अव्यक्त बाप दादा की आंखों में दादी के प्रति बहुत सम्मान दिखता था, जैसे समान बाबा मानते थे उनको, उनका रिगार्ड रखते थे। भले दादी ने 25 अगस्त 2007 को शरीर छोड़ा, लेकिन आज भी दादी हमें साथ महसूस होती है कि नहीं होती है? आज भी दादी प्रकाश स्तंभ के रूप में भी आज पूरे विश्व को प्रकाश दे रही हैं। आज उनका चरित्र एक अलौकिक पथ के रूप में, प्रकाशवान पथ के रूप में हमें प्रेरणा दे रहा है। दादी के लिए 4 लाइनें मैं ये कहूंगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की जीवंत मिसाल थी दादी। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की जीवंत मिसाल थी दादी। ईश्वरी स्नेह की शक्ति से, उनके पास शक्ति केवल प्यार की थी, ईश्वरी स्नेह की शक्ति से करती थी अद्भुत कमाल दादी। बाप दादा को जग में प्रत्यक्ष किया, बनी विश्व कल्याणी। अखंड स्नेह की शक्ति से, स्नेह अखंड स्नेह की शक्ति से थी दानी वो महादानी। संस्था व बाबा के बच्चों को सींचा अध्यात्म के बल से, वर्तमान को जोड़ दिया आने वाले सुनहरे कल से। श्रेष्ठ कर्मों से बनी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका। सद्भावना सहयोग से बनी हर दिल की शासिका। जो पास आता उनके पाता दिव्य पना, और दिव्य बुद्धि से देती थी सबको सुखद राह। आपने सींचा जिस वट वृक्ष को, ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए 1969 में दादी मुख्य प्रशासिका बनी, तो कुछ 100 सेंटर से हजारों सेंटर, केवल ना केवल भारत, विदेशों में भी 130 देशों में दादी के रहते बाबा का संदेश पहुंचा, है ना? तो आपने सींचा जिस वट वृक्ष को, है खिला और आबाद, लेकिन आज भी दादी जी आती हो तुम नित्याद, आती हो तुम नित्याद। और ऐसी दादी के साथ ऐसी विरली आत्माएं हैं जिनके भाग्य पर हमें भी कोई वो भाव नहीं आता पर नाज होता। तो ऐसे ही हस्ती हम सब के बीच हैं, आदरणीय सुभाष भाई जी, ज्ञान सरोवर के वरिष्ठ भाई। आप 35 सालों से मधुबन ज्ञान सरोवर में दादियों के अंग संग रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और मैं उनकी लगन देख के हैरान होता हूं कि इतनी सेवाओं में व्यस्त होते हुए भी उन्होंने दादी जी के ऊपर 100 से 150 प्रसंग लिखकर, अभी उनकी बुक बन रही है दादी प्रकाशमणि जी के ऊपर, तो ये दादियों के प्रति जो प्यार और दादियों के प्रति जो आपने जो पालना ली है, वास्तव में हम आपके अनुभव की आंख से हम दादी को आज उनके स्वरूप को जानेंगे, पहचानेंगे और दादी के जीवन की कुछ विशेषताओं को आज हम दृढ़ संकल्प से धारण भी करेंगे। ठीक है ना सभी? तो आज हम सभी दादी प्रकाशमणि जी के बारे में सुभाष भाई जी से जानेंगे। सुभाष भाई जी, हमने दादी की एक विशेषता देखी कि दादी हर बच्चे की विशेषता को जानकर उनको यूज करती थी। हमने सुना आपको भी पहले पहले दादी ने कहीं मुंबई, आप तो छोटे गांव से निकल के आए सुभाष भाई जी, और यहां पे दादी ने कैसे इन्हें, जैसे कहते ना एक नदी में धकेल दो, तैरना हो या तो डूबो या तैर के निकलो, है ना, जिम्मेवारी ऐसी देती थी दादी, ना आते भी फिर सीख लेता था व्यक्ति। तो आपको किस प्रकार से दादी ने सेवा में भेजा था?
ओम शांति। सबसे पहले तो हम दादी जी को नमन करते हैं कि प्यारी दादी जी ने हमें इतनी पालना दी, और इतनी पालना के बाद भी हम अभी तक संस्था की कैसे बढ़ोतरी हो रही है। दादी जी हर एक बच्चे के अंदर, हर एक भाई बहनों के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता देखती थी। मैं तो बहुत छोटा था, मैं 1983 में 10th क्लास का एग्जाम दे के आया था, फिर गया, फिर 84 में आया, तो 84 में भी हम सेवा में रहे तो दादी ने लगन देखी। फिर 85 में आया तो दादी जी को लगा इसको बाबा से बहुत लगन है, इसका थोड़ा टेस्ट लिया जाए। तो दादी जी ने मुझे जो यूथ वर्ष चल रहा था, यूथ ईयर, उसी में दादी जी ने मुझे मुंबई भेजा। वो भी एक अलग कहानी है कि मुंबई में एक ओम निवास करके बिल्डिंग थी, अभी वो ओम निवास के नाम से जाना जाता है मुंबई में, वो हरि भाई उनके मालिक थे। जब मुझे यहाँ से भेजा था तो वो गुजराती क्लब के नाम से था। एक्चुअली उनकी जो हेमकुर बहन थी, उनकी वाइफ थी, उन्होंने शरीर छोड़ा था तो वो अकेले हो गए थे। तो दादी जी को चिंता हुई कि अकेला भाई है, इसके साथ कोई होना चाहिए। तो मुझे जो भेजा था बच्चे के रूप में भेजा था कि उसके साथ रहो खेलो। तो जब मैं मधुबन से दादी जी ने भेजा है, तो जब मैं वहाँ गया, पहले तो रमेश भाई के घर में छोड़ा गोविंद दादा जी ने, उषा बहन रमेश भाई, फिर वहाँ हरिलाल भाई आए, वहाँ हमको वहाँ ओम निवास लेके गए, मिलाया। तो बहुत ही अच्छे भाई, नेचर बहुत अच्छी, साथ में फिर जाते थे गार्डन में, मॉर्निंग में घूमने जाते थे। फिर उसके बाद जो नलिनी बहन है तो वहाँ मुरली सुनने जाते थे
घाट कोपर में,
वो नज़दीक है वहाँ से। तो हमारा इसे दिनचर्या चालू थी। तो इसी बीच में क्या हुआ, हमारे उनका तबीयत भी ऊपर नीचे रहता था, तो हमारे हुशार रमेश, जो रमेश भाई आए थे मिलने के लिए, जिस दिन दादी जी वहाँ आने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ डिसाइड करना चाहिए, अगर आप लिख नहीं सकते तो टेप रिकॉर्ड में भर के दे दो। तो उन्होंने कहा, मैं जहाँ एक मकान का उद्घाटन था वहाँ मैं और सुभाष दोनों आएंगे, दादी से मिलेंगे। तो हम दादी से वहाँ मिले और दादी जी ने समय दिया। फिर हम हरिलाल भाई, हरि भाई और मैं मधुबन आए 31 दिसंबर 85 बाबा का मिलन। और वो जब आए तो पूरा डॉक्यूमेंट फाइल, पूरी जो जायदाद थी उसकी फाइल लेके बाबा को अर्पण किया। तो जैसे दादी ने, कौन बच्चा, मैं तो कुछ समझ भी नहीं है जितना, लेकिन उससे भी कैसे सेवा ली जाए वो दादी जी ने सिखाया। और यहाँ समर्पित उन्होंने पूरा सरेंडर किया अपना मकान आदि सब, और फिर हम यहीं रुके, वो चले गए। फिर वहाँ से हम गए महाराष्ट्र शिवनेरे किला पे, हमारे 25 कुमार भाई बहने थे, हम शिवनेरे पे जाके हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा की थी कि हम पूरा जन्म भर, मतलब लॉन्ग लाइफ, पवित्र रह के बाबा की सेवा करेंगे, और उसमें से 90% लोग जो है बाबा के सेवा में लगे। तो ये हमारा पहला, दादी ने जो सेवा में भेजा उसका फल, और अभी वो बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं मकान।
वेरी गुड। मैंने जो संकल्प करें और उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाए, ऐसी भी भाग्यशाली आत्माएं होती हैं। दादी का शब्द आते ही दादी का वो तपस्वी स्वरूप भी आंखों के सामने आ जाता है। दादियां यज्ञ में इतने साधन होते हुए भी दादियों ने साधना को बल दिया, तो आपने किस रूप में देखा दादी, साधन की बजाय साधना को ज्यादा महत्व दिया?
एक्चुअली आपको पता होगा मधुबन में साधन बहुत कम थे। आपको पता होगा कि यहाँ सिर्फ एक कार थी, वो भी दादी यूज करते थे, निर्वय भाई यूज करते थे, दीदी, मतलब सब लोग वही यूज करते थे। एक बस थी, वो बहुत पुरानी बस थी, और एक सब्जी के लिए ट्रक था। तो हमारी जो भूरी दादी है वो ट्रक में जाती थी नीचे सब्जी खरीदने के लिए या पार्टी का सामान लेने के लिए। और उस जमाने में एक बैलगाड़ी भी थी जो बस स्टॉप से यहाँ तक बैलगाड़ी में सामान रखते थे और वहां से यहाँ आते थे। लेकिन हमने देखा जो साधना थी, जैसे अभी यहाँ प्रोग्राम चल रहे शुरू शुरू में योग शिविर 10, उसमें 25 लोग आते थे तो निर्वय भाई जी खास मुरली में डायरेक्शन देते थे कि मधुबन फुल हो गया है, अभी नहीं आना है करके। और मैंने 1984 में देखा, एक इंग्लिश शिविर था, योग शिविर था, तो उसमें से केवल एक भाई आया था योग शिविर में। तो मतलब सामने सामने देखा कैसी परिस्थितियां बदलती गई बदलती गई। और सेवा के मतलब, जैसे हम लोग अभी सेवा में आते थे उस समय, तो एक हॉल विशाल भवन के ऊपर होता था, उसमें 100 सेवादारी सोते थे, 100 सेवादारी
पट पे
खट का तो सोच भी नहीं सकते थे,
और ऐसे लेटे हैं तो आजू बाजू भी नहीं, माना आपको उसी पोजीशन में ही लेटना है।
और कई बार जो ठंडी के दिन होते थे ना, तो रजाई बड़ी होती है, तो रजाई तो अंदर कोई है या नहीं पता नहीं चलता था। कई बार ऐसे पैर जाके डाल के जाते तो आवाज आता जोर से, अरे अंदर कोई है करके। तो ऐसी परिस्थिति, लेकिन दादी का प्यार स्नेह, दादी मुरली के बीच में बोला, अच्छा सब ठीक है, तबीयत सबकी ठीक है, सब खुश है ना, तो सब एकदम मस्त रहते थे, खुश रहते थे। और मधुबन के बाहर भी कोई नहीं जाना चाहता था, ज्ञान विज्ञान भवन सुखधाम तो उस समय नहीं था, लेकिन ऐसे नहीं, हमको मधुबन में, हम कहीं भी सोएंगे लेकिन मधुबन के अंदर। तो इतना मधुबन का वो जो महत्व था। एक बार क्या हुआ, एक भाई थे हरी भाई करके, गुड़गांव के थे, बाबा के जमाने के थे। वो रोज क्या करते थे, हम लोग तो कुमार लोग है, उठाया चलो सेवा में भागो, है ना। वो जैसे उठते थे ना तो अपना बिस्तर ऐसे लपेट के मस्त ऐसे रखते थे एकदम। मैं रोज देखता था, ये कौन सा नया नया रोज रोज क्या रखना है, हम तो निकले रजाई पड़ी है ऐसे निकले चले सेवा में आए,
फिर आके सोना है तो कौन लपेटे।
हाँ, क्यों लपेटे। तो मैंने उनको ऐसे मजाक में बोला, आप ये रोज करते हैं? तो वो तो बहुत बुजुर्ग थे, वो टेलर डिपार्टमेंट में आते थे सेवा करने के लिए। बोला बेटा इधर आओ, ऐसे करके मैं बिठा दिया उधर। बोला पता है मैं कब से करता हूं? बोला कब से? बोला हम भी ऐसे करते थे पहले, मधुबन में तो टेंट में थे, तो हम टेंट में 10-12 लोग थे और ऐसे ही चले गए। जब वापस आए तो टेंट में बहुत अच्छा बिस्तरा लपेट के रखा हुआ व्यवस्थित। तो वो एक दूसरे को पूछे, तुमने किया? बोला तुमने किया? बोला हमने तो नहीं किया। फिर किसी ने कहा मम्मा बाबा आए थे इधर, मम्मा बाबा आए थे तो एकदम उनका तो एकदम ये हो गया, तो मम्मा बाबा ने ये सब किया है। तो उनके कि बच्चे थक जाते जल्दी जल्दी चले तो हम करते, तो मम्मा बाबा मिलके वो सबके बिस्तरे ठीक कर देते। बोला वो दिन और आज का दिन मैंने कभी भी बिस्तरा ऐसा छोड़ा नहीं, और उससे मुझे एक बात सीखने को मिली कि उस समय से मैं कहीं भी जाओ देश विदेश या अपने कमरे में, जब भी कमरे से निकलता हूं तो बिस्तरा व्यवस्थित करके ही निकलता, ये मुझे सीख मिली। तो हमें भी ये सीखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम किसी के पास जाते हैं ना तो बोलते नहीं नहीं उधर ना, उस बेडरूम है उधर नहीं जाओ, क्योंकि बेडरूम में ना ऐसा सब उटल उलट पलट होता है, इसलिए वो बोलते उधर नहीं जाओ करके। तो हमारी जानकी दादी में बहुत होशियार थी कि सब एकदम एक्यूरेट सारा मकान में जाता, आलमारी ये सब खोल खोल के देखती थी। तो ये मुझे एक सीखने की बात मिली और वो हमने जीवन भर सीख मतलब चालू है।
वेरी गुड, हम भी इसको धारण करेंगे। दादी के लिए मैं सुनता था कि कभी भी किसी स्टूडेंट भाई बहन के घर जाती थी तो उनकी अलमारी खोल के देखती थी, बिस्तर के नीचे उनका टॉवल जो आज आपने यूज किया वो टॉवल लेकर आओ। मना उससे ज्ञान माना ही आपके कर्म में व्यवहार में वो शुद्ध था। दादियों को इस बात का बहुत, और अगर सेंटर पे कहीं पर्दा थोड़ा सा गर्त बोलते योग आपका ठीक नहीं है, ये पर्दा ऐसे कैसे, हल्का सा पर्दा भी अगर कहीं डिस्टर्ब है तो दादियों को ये रहता था, तो ऐसी परफेक्शन दादियों ने लाई। दादी बड़े के साथ बड़े रूप में, बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग रूप में, और बच्चों के साथ भी दादी बच्चों जैसी। हमने दादी ने 1978 से माना अखिल भारतीय बाल विकास शिविर शुरू किए थे यहाँ पे, तो दादी कैसे बच्चों को, बच्चों की स्नेहमयी दादी जैसे बन गई, कैसे दादी के साथ बच्चों का जो विकास दादी चाहती थी वो कैसे आपने देखा?
मैं समझता हूँ उस समय जो भी दादी जी की पालना ली जिन बच्चों ने, वो अभी बड़े बड़े सेंटर बड़े बड़े महारथी बने हुए। हमें याद है कि एक बार क्या हुआ, एक छोटा बच्चा शूज पहन के वो शांति स्तंभ में गए तो दादी जी उसके पीछे पीछे घूम रही, अरे इधर आओ ये बाबा का स्थल है ऐसे। फिर उसको पकड़ के गोद में उठा के उसको तोशा खिलाया और फिर बोला देखो जूता पहन के नहीं जाना। ऐसे दादी प्यार से सिखाती थी। जब बच्चों का प्रोग्राम होता तो दादी तो इतना, दादी खुश होती थी लेकिन बच्चे तो बच्चे एकदम। तो जब क्लास में बैठते थे बच्चे तो दादी पूछती थी अच्छा गुस्सा करोगे? बोला नहीं, ऐसे जोर से सब बोलते थे। मम्मी की बात मानोगे? हाँ मानेंगे। झूठ बोलेंगे? बोला नहीं बोलेंगे। मतलब इस प्रकार दादी पूछती थी और सब लोग हाँ जी मतलब पॉजिटिव जवाब देते थे। और बच्चे माना सबसे ज्यादा रूठते हैं, रूठोगे क्या? बोला नहीं तो दादी जी आपको आइसक्रीम खिलाएगी। फिर सब तालियां बजाते थे। तो दादी जी इतना प्यार। फिर उस समय क्या आम आते थे, मई मास का टाइम होता था, देखो बच्चों आम नहीं तोड़ना है। तो फिर क्या होता था कई बार कोई बच्चा आम तोड़ के जाता तो वो फिर दादी को कंप्लेन कर, दादी ये ना आम तोड़ा है इसने। फिर दादी उसको बुलाती थी, फिर दादी समझाती देखो आम नहीं तोड़ना, फिर टोली खिलाती थी। तो डायरेक्ट इधर उधर किसी के पास नहीं जाते थे, डायरेक्ट दादी के पास कंप्लेन लेके जाते थे बच्चे लोग। एक बार क्या हुआ, बाबा के पहाड़ी पे जाना था प्रोग्राम सब बच्चों को, तो दादी जी ने मुरली के समय बोला देखो आज सबको साइलेंस रहना है, बाबा के साथ बातें करना है, और बाबा के पहाड़ी पे जाना है, बाबा को बोलना बाबा हमारे आपके पास बुलाओ, ऐसे करके इतना उमंग गुस्सा डाल किया। तो सारा दिन बच्चे एकदम साइलेंस, बाबा के साथ बात करे योग करे। फिर सब बाड़ी पे गए। मैं समझता हूं करीब 200 बच्चे होंगे, 200-300 बच्चे थे। गए तो सब मेडिटेशन में बैठे, ध्यान में, तो उसमें से 90 बच्चे ट्रांस में चले गए, ट्रांस में चले गए। अब क्या हुआ, ट्रांस में तो चले गए, और उस समय क्या हुआ, बारिश हुई जोर से। तो बारिश हुई तो दादी को बहुत चिंता हुई, बच्चे और वो लेटे हुए पड़े हुए ऐसे ट्रांस में गए हुए। फिर दादी जी ने सब बदुमन वालों को बुलाया, देखो जाओ बाबा की पहाड़ी पे जाओ और बच्चों को उठा के ले जाओ। एक दो गाड़ियां थी, गाड़ी लेके गए, तो जो बड़े बड़े बच्चे तो दो दो कंधे पे ऐसा हाथ डाल के नीचे उतारा, जो छोटे थे कंधे पे डाल के, क्योंकि वो ट्रांस में उतरने के लिए तैयार नहीं बाबा के साथ। फिर लेके आए मधुबन, हिस्ट्री हॉल है जो, उसमें सबको सुला दिया ऐसे लाइन से सुलाया। तो दादी को चिंता होगी, अब ये क्या, भोजन नहीं बच्चों, कुछ नहीं। तो दादी जी ने फिर गई सबके ऐसे सिर पे हाथ घुमाया, आओ अभी बहुत हो गया, आओ नीचे, बहुत हो गया, बाबा के साथ हमने बहुत किया। ऐसे करते करते सब बच्चों को जगाया, मतलब ट्रांस से वापिस, और फिर भोजन पे लेके गए। और कुछ बच्चे तो वापिस तो आए, फिर ऐसे पैदल करते करते एकदम ट्रांस में जाते। तो इतना मतलब थी दादी जी ने, फिर सुबह क्लास में ला, दादी से बहुत गलती होगी, आगे मैं कभी नहीं बोलूंगी करके, ट्रांस में जाए बच्चे करके। तो दादी के प्रति इतना बच्चों का भी प्यार होता था, दादी का भी प्यार होता, और रोज कुछ ना कुछ दादी बनाती थी बच्चों के लिए। और वही बच्चे हमने देखा, जब भी जाते देश विदेश कहीं भी तो बताते, हम बच्चों के प्रोग्राम में आते थे। मधुबन में ज्ञानसरोवर में भी कुछ लोग है जो बच्चों के प्रोग्राम से निकले हुए। तो ये दादी की अमिट छाप बच्चों के ऊपर।
तो आज भी अव्यक्त मिलन है, तो सब यहाँ भी अनुभव करेंगे ना, सभी लोग करेंगे ना आज सभी। तो पहले मोबाइल तो ऑफ करनी पड़ेगी ना सभी को, ठीक है ना। तो आज सभी ऐसा अनुभव करेंगे।
10:30 बज रहा है
ट्रैफिक कंट्रोल के। बाबा ने हम सब बच्चों को भोजन की शुद्धता पर बहुत बल दिया, और हम दादी को भी देखते थे कि किचन में दादी का बार बार जाना, माने दादी भी जो अन्न ब्राह्मणों के अंदर जा रहा है, जो भोजन जा रहा है, उसकी शुद्धता पर, पवित्रता पर बहुत बल देते थे। हम किचन को और कहीं तो नहीं देखा, माने यहाँ ही भोलेनाथ का भंडारा जो, तो दादी हमेशा कहती थी भोलेनाथ का भंडारा सबसे प्यारा। तो दादी किस तरह से अन्न शुद्धि को और भंडारे को किस तरह से महत्व देते थे?
दादी का भंडारे से बहुत ही लगाव कहो, प्यार कहो, हर गुरुवार को तो सीधा किचन में आके पूरा दृष्टि देके जाती थी। और जब भी दादी फ्री होती थी, दादी तो मतलब अच्छी थी, तो ब्राह्मणी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो एक बार क्या हुआ, दादी चुपके से नीचे जो मधुबन का भंडारा है वहां आए, वहां सूरज भाई हम लोग थे, फिर बैठते थे कुछ डिस्कस करते थे। मुन्ने बहन वहां बहुत परेशान हो गई, मुन्ने बहन पूरे मधुबन ढूंढा, दादी कहाँ है, दादी कहाँ है, दादी कहाँ गई, ऐसा करके। तो लास्ट में किसी ने उनको बोला कि दादी जी तो इधर जाते हुए देखा है भंडारे की तरफ। तो मुन्ने बहन आई तो दादी आप बोल के तो आना था ना। तो दादी बोलती मुझे है ना एकांत बहुत अच्छा लगता है, मेरे को जब भी टाइम मिलता है ना ये भोलेनाथ भंडारे में, मुझे आने का ऐसे कशिश हो जाती है, और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि बाबा यहाँ बैठा है करके। तो कई बार दादी ऐसे बिना कहे चुपके से आके बैठ जाती थी, और एक और दादी देखती थी ना कि यहां से चौथी मंजिल तक भोजन लेके जाते हम लोग, 500-500 का भोजन ऐसे बाल्टी से उठा के ले जाते थे। तो दादी जी को बहुत संकल्प चलता था कि नहीं यहाँ कुछ साधन होना चाहिए। तो दादी जी ने एक सिंपल, हमारे गुजरात के आनंद काका थे बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, उन्होंने 16,000 में लिफ्ट बनाई, 16,000 रुपए में और उसमें क्या था, ऐसे हैंडल बाल्टी अंदर रखते थे, ऐसे हैंडल लगा के ऊपर जाते थे ऐसे। तो इस प्रकार चला, फिर मोटर लगी। तो एक बार क्या हुआ, लिफ्ट खराब हो गई, तो मैं भोली दादी के पास गया, भोली दादी लिफ्ट खराब है और 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट कम था, 12 बजे गीत बजता है। तो भोली दादी ने कहा जाओ दादी के पास जाओ, मतलब प्रकाशमणि दादी के पास जाओ। तो मैं जब ऑफिस में दौड़ते दौड़ते गया तो दादी ने, क्या हुआ, कुछ तकलीफ है सुभाष, क्या हुआ तेरे? नहीं दादी जी, अभी भोजन का टाइम हो गया और लिफ्ट खराब हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही आती हूँ ना। तो दादी मेरे साथ, मैं सोच रहा था दादी क्या बाल्टी उठाएगी क्या, अंदर अंदर मैं सोच रहा था ऐसे। जैसे हम उधर आए, डाइनिंग में आए, तो जैसे दादी को देखते थे सो कट्टा हो जाते हैं लोग, तो मधुबनियों से, तो दादी आओ इधर आओ इधर जाओ, ये सुभाष के साथ जाओ और भोजन उठा के ले आओ सब।
चौथी मंजिल।
फिर दादी ने बोल दिया तो क्या, तो फटाफट एक एक पतेला चार चार पांच पांच लोग पकड़ा, सीधा डाइनिंग में, और बराबर भोजन 12 बजे का गीत शुरू हुआ और भोजन शुरू हो गया। तो ये दादी की मतलब कमाल थी, दादी के अंदर वो पावर थी अपनापन की। और उसको ही ना कि अच्छा उसको फोन करो इसको बोलो, नहीं, खुद दादी हमारे साथ आई। और इस प्रकार से तो ऐसे कई बार क्या होता था, दादी बोलते अच्छा भोजन क्या बनाए, तो हम तो छोटे थे ना, इतना पता नहीं होता था। तो मैंने कहा दादी जी दाल बनी है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, धड़ धड़ बोल दिया। तो दादी जी बहुत मुस्कुराई, बोलती मुट्ठा ऐसे नहीं बताना होता है, देखो जैसे दाल है तो मूंग की दाल बोलो जो दाल है, हाँ बैंगन की सब्जी है, अगर चावल तो रोज ही होता है, रोटी रोज ही होती है, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज जैसे पकौड़ा बना है, आलू का पकौड़ा बना है, ऐसे बताओ। तो दादी जी ऐसे सिखाती थी कि ऐसा बताना होता है, बाकी दाल चावल सब्जी हो तो होता ही ना होता। तो इस प्रकार दादी हर एक को सिखाती थी,
मन करके सिखाना और दूसरों को प्रेरित करना, और अंत तक जैसे दादी बच्चा बन के पूरे उमंग उत्साह से अंत तक अपने आप को उन्होंने इस तरह से सेवा में लगाया। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जैसे बैच का बहुत महत्व, और दादी को भी हमने देखा बैच के लिए बहुत अटेंशन खिंचवाते, खासकर घर गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों का, जो कई बार ऐसा सोचते हैं हम ऑफिस में बैच कैसे पहने, या हम ऐसे कई ऐसे सोचते ना, तो उनके लिए भी कुछ एक प्रेरणा कोई वाली बात।
एक्चुअली बैच की भी एक पहले त्रिमूर्ति का था, फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर दादी को लगा दे, टीचर बहनों को अच्छा सोने का बैच होना चाहिए, समर्पित वालों को होना चाहिए ऐसे। तो शुरू शुरू में मेरे को संकल्प चलता था, क्योंकि जैसे हमारी माँ थी तो माँ ने सोने की चेन दादी को डाली, तो ये क्या करते होंगे, ऐसा चलता था संकल्प। तो क्या था कि हमारी माता जी ने एक संकल्प किया कि जो भी हमारा सोना है सब बच्चों को कुछ चेन, किसी को बैच ये बना के। तो मेरी मुलाकात वो गुलाब भाई से हुई, गुलाब भाई जो आज मेरे के, तो उनसे बात हुई, बोला हाँ बना देंगे, मैं ये सब यज्ञ का मैं ही बनाता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं शुरू शुरू में आया था तो दादी जी और जगदीश भाई जी ने मुझे बुलाया और कहा कि आप ये डिजाइन दिया, ये जो टीचर बहनों का बैच का डिजाइन दिया, ऐसा बना सकते हैं क्या? अब दादी जी ने बोला तो हाँ हाँ बना सकते, बोल दिया, जबकि कुछ नहीं आता था उनको। तो गए वो सैंपल लेके गए और एक मास उन्होंने बहुत मेहनत करके वो बैच बनाया, और एक मास के बाद फिर दादी के पास आए, दादी को दिखाया तो दादी को बहुत पसंद आया। तो दादी जी ने पूछा इसका कितना दाम है, तो उन्हें नहीं नहीं दादी क्या दाम है। तो दादी जी ने कहा ऐसा करोगे तो मैं तुमसे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हमें तो बहुत बैच बनाया और तुम बोलेगा नहीं नहीं इसका दाम नहीं, तुम्हारा परिवार है, व्यापार है, सबके ध्यान। जो भी है आपको लेना पड़ेगा, तभी मैं आपसे बांधा हूं। फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो शुरू शुरू में तो थोड़ा थोड़ा होता था, तो लेते थे फिर बाबा के भंडारे में डालते थे। उसके बाद धीरे 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 टीचर बहनों के ब्याज, समर्पित भाइयों बहनों के ब्याज बढ़ते गए। तो उनको इतना खुशी होती थी, अभी भी खुशी होती है जहां बहनों को देखते हैं
आज तक भी उनसे,
हाँ, कि जैसे अविक्त बाबा ने ब्याज पहना तो खुशी होती है ना, हमने बनाया, टीचर बहने ब्याज पहनती तो हम, तो अंदर से बहुत खुशी, लेकिन बहुत सच्चाई सफाई से और बाबा के प्रति इतना प्यार, इतना स्नेह। और अभी भी कुछ भी बात होती है तो वो बहुत, जैसे बाबा पारकी है ना ऐसे, तो वो इतना प्यार कि दादी 3 बार उनके घर गई, छोटा सा घर है अजमेर में, 3 बार दीदी भी गई और कई लोग वहां जाते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो ये बाबा की गद्दी है, बाबा यहां बैठता है, मैं तो निमित्त मात्र सेवा करता हूं। तो आज जो देश विदेश जितने भी बैच ये सब उनके हाथों से बने होते हैं और बहुत ही स्नेह से प्यार से, अभी भी शांतिवन में भी शायद उनका है। तो कैसे बाबा अपने बच्चों के अंदर शक्ति भी देता है, परखता भी है और सच्चाई सफाई करने वालों को कैसे आगे बढ़ाता, वो हमने देखा। तो ये ब्याज की शुरुआत हुई थी और अब तो बहुत सारे बनते हैं।
जैसे बाबा कहते हैं कर्म योगी बनो बच्चे, माना कर्म और योग, आज भी बाबा ने बैलेंस की बात कही, आज की अव्यक्त वाणी थी, तो कर्म और योग का बैलेंस तो ब्लेसिंग। तो दादी का आपने ये कर्म योगी जीवन कैसा देखा?
क्या होता था जब नॉन सीजन होता, नॉन सीजन माना जैसे ये जुलाई अगस्त बहुत बारिश होती थी मधुबन में, तो उस समय यहाँ कोई भी प्रोग्राम नहीं रखते थे, मधुबन की बात कर रहा हूँ, तो उस समय सेवादारी भी नहीं होते थे। तो क्या हुआ, एक दिन भोली दादी दादी के पास गई, दादी अभी आज सुबह सब्जी नहीं कटी है, भोजन में कैसे, बल्कि वो भोजन के लिए सब्जी कटनी चाहिए। तो दादी जी को बताया, तो दादी जी जैसे मुरली सुनाई, मुरली पूरी हुई ओम शांति भवन में, दादी चुपके से भंडारे में आई और एक मुड़ा लिया और वो सब्जी काटना शुरू कर दिया। सब्जी काटना शुरू किया तो सब मधुबन तो छोटा था ना, फटाफट सब तरफ आवाज, दादी जी सब्जी काट रही है, दादी जी सब्जी काट रही है। तो सब दौड़ते 10 मिनट के अंदर सब्जी कट गई। तो इस प्रकार दादी खुद अपने कर्मों से सबको सिखाती थी। और फिर तो दूसरे दिन से तो फिर कभी कमी नहीं पड़ी, टाइम पर सब्जी कटती थी, सब लोग उमंग उत्साह, जैसे हमारे रामलोचन भाई, सूरज भाई, जो बड़े भाई होते थे सब, हम लोग भी सब बैठते थे। तो दादी अपने कर्मों से, जैसा मैं कर्म करूं और करेंगे, इस प्रकार से मैंने देखा। और एक बार क्या हुआ, हिस्ट्री हॉल में क्लास चल रहा था, पानी की बहुत कमी थी, तो मुन्नी बहन दादी की दवाई और एक गिलास पानी लेके आए हिस्ट्री हॉल में, क्लास चल रहा था, क्लास दादी ने देखा ग्लास पानी का फुल भरा हुआ है। तो दादी जी ने कहा देखो ये आधा कम करके आ जाओ, पानी की कमी है। तो वो आधा ग्लास कम करके फिर दादी ने दवाई, बोले दादी तो आधा ग्लास से भी दवाई ले सकते ना, फिर आधा वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो दादी का प्रैक्टिकल जो देखा सभी निवासियों ने, तो सभी ने अपने ऊपर अप्लाई किया, स्नान भी करना है तो थोड़े पानी से जितना हो सके बचत करना है। तो ये दादी अपने कर्मों से सिखाती थी।
जैसे विंग्स के प्रोग्राम्स चलते थे और विंग्स के प्रोग्राम में बड़ी बड़ी अथॉरिटीज आती थी, तो हमने मीडिया के तहत हम उनसे इंटरव्यू भी लेते थे, तो हम देखते थे कि एक हॉल के लास्ट कोने में बैठा हुआ व्यक्ति जब अनुभव सुनाता था तो वो 4 दिन यहाँ रुकता था, तो कभी वो किसी स्पीकर का नाम नहीं लेता था कि ये क्लास अच्छी लगी। वो क्या सुनाता था कि वो जो 10 मिनट हॉल में दादी आई ना, जो मैंने अनुभव किया वो प्यार का, वो मैं कभी नहीं भूल सकता जिंदगी में। माने दादी उद्घाटन के समय 10 मिनट हॉल में आती थी दो शब्द बोल के, लेकिन दादी के जो प्यार के वाइब्रेशन थे वो हर एक फील करता था। और हमने देखा कि दादी ने पूरी लाइफ प्रेम की शक्ति से ही काम लिया, कभी अथॉरिटी यूज नहीं की, जैसे कि अथॉरिटी या शक्ति यूज नहीं की, प्यार से ही हर एक से कार्य लिया और चलाया। तो दादी की ये जैसी माँ जैसी पालना, उसको किस रूप से आपके प्रैक्टिकल में कुछ अनुभव ऐसा हो?
दादी जी का मतलब जो प्यार है, मतलब अनलिमिटेड। जैसे मैं जब वहां भोजन की सेवा करता था तो मेरे कंधे में दर्द हो गया ऐसे, तो मैं इलाज के लिए गांव गया। जब वापिस आया तो दादी जी ने पूछा, कैसे तुम्हारा ठीक है? तो मैंने कहा 95% ठीक हुआ। तो दादी बोलती, अरे 5% क्यों छोड़ के आया? तो इतना मतलब ख्याल हर एक मधुबन निवासी के प्रति। एक बार क्या हुआ, हम छोटे हॉल में, हिस्ट्री हॉल जिसको बोलते, योग में वहां बैठते थे। फिर दादी जी क्या करती थी, दादी जी पीछे सोफे पे आके बैठ जाती थी, तो योग पूरा होते ही टर्न हो जाते थे, टर्न होते तो दादी दृष्टि देती थी। तो ऐसे ही रेगुलर चलता था। एक दिन क्या हुआ, देखा कि हॉल में लोग कम है, तो दादी जी को संकल्प आया कि कहाँ गए। तो दादी 4:15 बजे उठी, वहां एक सिक्योरिटी वाला था उसको पकड़ के, हमारा जब मधुबन निवासी जस होते ना, वहां चक्कर लगाए तो देखा कुछ लोग, तो उसको बोला कि जो सोए है ना उठाओ नहीं, उसको नाम लिखो उसका ऐसे। तो नाम लिखा है और फिर शाम को क्लास रखा। तो उसमें से एक भाई था बहुत सिंसियरली योग आदि करते, कभी मिस नहीं करता था। तो दादी जी ने उसको सीधा नाम लिया, पाठक आज योग में क्यों नहीं आया तुम? तो पाठक बोला, नहीं दादी मैं तो यहां बैठा था। तो तुम्हारे खटिया पे कौन था? दादी वो चंद्रुबाई है ना, मेरे खटिया पे सो गया था। जैसे दादी ने बोला चंद्रुबाई का नाम, सारे क्लास इतना जोर से हंसे। तो बोला चंद्रु ऐसा क्यों किया उसके? दादी मैं अहमदाबाद गया था ना, तो बहुत थक गया था, तो मुझे पता है इसके खटिया पे सोएंगे तो मेरे को कोई जगाएगा नहीं करके, तो इसलिए मैं उसके खटिया पे सो गया। मतलब ऐसे बचपन, तो ऐसे दादी पूरा ध्यान भी रखते, क्योंकि बच्चे है तो दादी का ऐसा नहीं कि इनके कमरे में क्यों जाए, दादी को अथॉरिटी थी, कहीं भी जा सकती है। तो ये दादी इतना छोटी छोटी बातों का ऐसे स्नेह प्यार देती थी।
दादी आध्यात्मिक उन्नति का बहुत बहुत ध्यान रखती थी। और जैसे दादी अपने से भी ज्यादा हमने देखा कि छोटों का ध्यान, कई बार प्रोग्राम में भी हमने देखा, ऐसा नहीं दादी को, अब दादी कहीं जाएंगी तो सब उनके प्रति, सब पाल दादी पे ही ध्यान रखेंगे, व्यस्त हो जाएंगी दादी, लेकिन दादी जो साथ आए हैं उनका भी ध्यान रखती थी। तो ऐसा कोई उदाहरण आपके ध्यान में?
क्या होता, गांधीनगर में बहुत बड़ा मेला था, तो मुंबई वालों ने नया नया बस दिया था, तो दादी जी ने कहा नहीं एक बस, तो दादी भी जाने वाले थे उद्घाटन, तो निवास मधुबन निवासी भी चलो करके, तो हम लोग भी गए। तो दिन में तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था गांधीनगर में, ब्रह्मा भोजन, बहुत प्रकार का भोजन ये सब। फिर हम लोग अक्षरधाम इधर उधर घूम फिर के फिर रात को उधर ही गए। जब रात को, मतलब दिन में जहाँ भोजन किया था ना, रात को हुआ तो कोई भी नहीं था, सब सुनसान, ना भोजन ना कुछ, तो लपेटना लगे थे सब। तो बोले क्या करे, शाम हो गई थी, काफी समय हो गया था, करीब 8 बज गया था, 8:30। तो हम लोग गांधीनगर सेंटर पे आ गए। हम डिसाइड किया कि अभी मधुबन चले जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ इतने लोगों को कौन बनाएगा पूरा। तो उस समय दादी जी गवर्नर के साथ भोजन कर रहे थे, वहां के गवर्नर आए थे उद्घाटन के, भोजन पे आए थे उनके साथ। तो हमारे जमुना प्रसाद भाई जो मुरली डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, वो दादी को बोले कि दादी हम जा रहे छुट्टी लेने आए। तो दादी ने कहा भोजन किया? तो भाई चुप हो गया। अच्छा अच्छा 10 मिनट रुकना मैं आती हूँ। तो जैसे गवर्नर विदाई किया दादी, हम लोग तो बस से उतरे नहीं, नहीं तो वहां जगह थी नहीं ना, इतने छोटा सेंटर था। तो दादी बस में आई तो दादी ने कहा देखो मुझे पता चल गया कि आप लोगों ने भोजन नहीं किया है। तो सब चुप हो गए। दादी को क्या बोल सकते भाई, नहीं अब सब नीचे उतरो। फिर वो कैलाश भाई राजू भाई उनको सबको बोला चलो पूरी बनाना शुरू करो, ये करो फटाफट। जैसे वो शुरू किया तो निवासी तो हमने फटाफट हाथ बार लगाया, 20 मिनट में सब भोजन तैयार हो गया। भोजन तैयार हो गया फिर
अब दादी गवर्नर से भोजन कर,
फिर भोजन तैयार हो गया, फिर दादी काउंटर बनाया तो दादी खुद बैठी, दादी खुद भोजन खिला रहे हम लोग को, क्योंकि बच्चे है ना। तो भोजन करा के सबको, दादी को अभी संतुष्ट होगी, दादी दादी को अच्छा लग रहा अभी। फिर कैलाश बहन को जाओ निकालो बेडशीट निकालो, फिर 50 बेडशीट निकालो, सबको सौगात दिए। फिर सब लोग क्या खुशी मना के भी बस में बैठे, दादी बस में चढ़ी और सबको विदाई दिया और कहा मैं सरला को फोन करती, मतलब महसाना वाली, आप महसाना में जाना, अभी बहुत देर हो गई है तो हम महसाना में रेस्ट करना, फिर सुबह 5 बजे निकल जाना। तो दो सरला बहन को फोन किया क्योंकि 50 लोग कहाँ सोएंगे, तो ऊपर छत था तो छत पे सारे गदले वदले डाल के आराम से 2-3 घंटा आराम किया और फिर वहां से मधुबन आए। तो दादी, क्योंकि दादी को पता था कि मैं जहां जाती हूँ ना तो सब मेरा ही ध्यान देखते है, हमारे जो निवासी उसको फिर कोई देखने वाला नहीं होता है, तो इसलिए दादी हर बात का ध्यान रखती थी, इस प्रकार से पालना देती थी। इसलिए दादी ने एक कोई भी बात करो, चाहे नकेले की खुदाई करना है, चाहे कुछ सामान कुछ भी, दादी ने बोल दिया वरना हो गया। इतना दादी भी, दादी को पर भी फेद था और मधुबन निवासियों का भी दादी पर इतना प्यार था।
बहुत अच्छा, मैंने ये है रियल लीडर कहा जाए उसको, हम भी ऐसा ही बनेंगे जैसा दादी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। जैसे दादी के हमने देखा, दादी ऐसा व्यक्तित्व हमें लगा कि अव्यक्त दादी जब संपूर्ण हुई और भौतिक देह त्याग किया, फिर जब डायमंड हॉल में बाप दादा आए तो ये एक सरप्राइज था कि आपने भी अनुभव किया होगा कि दादी भगवान सम्मुख है लेकिन दादी की गैर मौजूदगी फील हो रही थी। माना दादी ने कैसा विराट व्यक्तित्व था कि भगवान है फिर भी हम दादी को मिस कर रहे थे, दादी ऐसी थी। तो जैसे हम और बाप दादा को भी देखते थे कि दादी को बहुत रिगार्ड देते थे, तो आपका अव्यक्त बाप दादा के साथ का कोई ऐसा अनुभव जो
क्या था? पहले हमारे पास मधुबन छोटा घर था, तो पूरा मतलब शुरू शुरू में हफ्ते में 3 बार बाबा आते थे हमें, हमने देखा, और 3 दिन माना रोज ही, क्योंकि शाम को 6 बजे आते थे, दूसरे दिन 4 बजे 5 बजे आते थे, तो 2 दिन हो जाते थे, फिर 1 दिन, फिर ऐसा ऐसे हफ्ते में 3 बार होता था। और तीन बार तो कहने में, लेकिन जैसे कि 2 दिन हो जाते तो 6 दिन तो बाबा आते थे। तो ये साधक तो बहुत कम थे ना, तो बहुत मेहनत करते थे, रोटी में सब्जी में हर पूरा मेहनत करते थे। तो लास्ट में क्या होता था, लास्ट जो बाबा होता था तो दादी खास भंडारे वालों को बोलती कि आप बाबा को खाना खिलाना। तो हम जो सूरज भाई है, आत्म प्रकाश भाई है, हमारे जो भोली दादी है, सब हमारी टीम है ना, सब 36 प्रकार का भोजन बनाते थे, थोड़ा 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 थोड़ा। अब 36 प्रकार तो सभी के चांस लग जाता, तो हम भी उसमें शामिल हो गए, मेडिटेशन हॉल की बात है। तो सभी ने खिला तो मेरा नंबर आ गया। अब मैं बाबा को कैसे खिलाऊं, संकोच पड़ गया ना बाबा को। तो दादी जी ने एक पकौड़ा उठाया, बोलते खिलाओ बाबा को। फिर मैंने बाबा को, अब एक तो बाबा को खिलाया,
वेरी गुड, ये भी तो भाग्य है।
फिर बाबा ने, मुझे अभी तक याद है, एक छोटा सा समोसा था उठाया और मुझे खिलाया, तो मैं कभी ये चीज भूलता नहीं। तो इस प्रकार से बाबा प्यार पालना, और खास करके रोटी डिपार्टमेंट वालों को, क्योंकि सुबह 4 बजे से उठ के थेपला बनाना, पूरी बनाना, ये करना। तो बाबा कल कहते थे माताओं की मसाज करने रोज बाबा आता है, ऐसे खास बाबा बोलते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी।
दादी ने भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बाबा की प्रत्यक्षता की, और बाबा के ज्ञान का, हर आत्मा को बाबा का संदेश मिले, उनके अंदर ये बहुत भावना होती थी। शिकागो के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दादी ने भाग लिया था, वो अनुभव सुना।
दादी जी शिकागो, वहाँ जब मैं सोचता हूँ स्वामी विवेकानंद के 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो खास विश्व शांति सम्मेलन के रूप में वहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन था, तो दादी को अध्यक्षता के रूप में प्रतिमा बहन कोई वहाँ की सेवा करके, तो उस समय शायद दादी के हाथ से पेड़ भी लगाया था उधर। तो दादी का जो भाषण था वो इतना लोगों ने सुना प्यार से एकदम, क्योंकि ट्रांसलेशन होता है। उस समय दादी जी करीब करीब 2 मास बाहर थी, 2 मास। तो 2 मास दादी मधुबन से बाहर होना बहुत बड़ी बात होती थी ना। तो हम लोग सब इंतजार कर रहे थे, दादी आएगी, दादी आएगी, तो हम लोग क्या स्वागत करेंगे। तो जो हम श्रीनिवास भाई उन टीम को हम दिया था कि आप देवी देवता बन के दादी का स्वागत, मतलब स्टेज पे कल्चरल प्रोग्राम। तो उस समय क्या होता था, गाड़ियां बहुत कम होती थी, तो जैसे कि एक गाड़ी आई तो एक भाई ने फटाके फोड़ दिया, धड़धड़ धड़धड़, दादी आई दादी करके। तो वो गाड़ी है ना, ओम शांति भवन से सीधा दिलवाड़ा के तरफ निकल गई, अरे ये तो दूसरा कोई था। तो मतलब इतना उतावलपन दादी के लिए। फिर दूसरी गाड़ी आई, तो दूसरी गाड़ी में दादी जी थी। तो उस समय हमने देखा सबके अंदर इतना उमंग, सब सारी बड़ी बड़ी बहने सब, तो मुन्नी बहन है ना लक्ष्मी में बनी थी, तो मुन्नी बहन स्वागत करे दादी का। और तो दादी को पता ये कौन है करके, क्योंकि कभी देखा नहीं था लक्ष्मी बने हुए पूरा ड्रेस भी। तो जैसे देखा, अरे मुन्नी तुम, वैसा करके दादी को एकदम आश्चर्य लगा। तो इस प्रकार से हमने कहा, सभी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते थे, कल्चरल प्रोग्राम करते थे, दादी का स्वागत करने के लिए अलग अलग ड्रामास करते थे। सूरज भाई और रामस्लोक भाई, वो एक स्वर्ग में एक सीट खाली, ऐसे बहुत ऐसे, क्योंकि उस समय ये टीवी का जमाना नहीं था, ये मोबाइल का जमाना नहीं था, और यही कल्चर प्रोग्राम, तो इसमें सब एंजॉय करते थे, सबको अच्छा लगता था। और हर प्रोग्राम में हम लोग छोटे छोटे डायलॉग लिखते थे, तो हमें खास निमंत्रण मिलता था। मुन्नी बहन ढूंढते ढूंढते आती थी, भाई ये आज राखी का प्रोग्राम है, ये आपको ड्रामा करना है, वो श्रीनिवास भाई और हम दोनों ऐसे
छोटे पांडव भवन, छोटा सा, सब प्यार से छोटे होते थे बच्चे, तो ये सब खुद ही करते थे सभी। उस समय तो न टीवी न कुछ भी चीजें होती नहीं थी।
तो एक बार क्या हुआ, हम ड्रामा बनाए, एक सिल्वर जुबली का प्रोग्राम था, उसमें ड्रामा बनाया। तो उसमें जो रमेश भाई उषा बहन ने एक ड्रामा लिखा था, जो एज्ञे की हिस्ट्री की शुरुआत थी कि पैसे पैसे साक्षात्कार, पैसे पैसा कुल्फी, ऐसा कुछ डायलॉग था। तो हम लोगों ड्रामा किया, तो क्या था उसमें, वो जो सिंध में पवित्रता के लिए पिटाई करते थे हस्बैंड उसके वाइफ की, तो वो सीन क्रिएट किया था। तो उस समय तो सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, दूसरे दिन कोई भाई लोग युगल गए होंगे, दादी जी हम तो ये चीजों को भूलना चाहते हैं और ये क्या ड्रामा, ऐसे करके। दादी को लगा ये तो बात सही है, दादी किचन में ढूंढते ढूंढते वो रात वाला लड़का का है, रात वाला लड़का का है, तो आई मेरे पास रात को, अपने ड्रामा किया था। मैंने कहा मेरे को अभी शाबाश के मिलने वाली। तो दादी बोलती देखो ऐसा ड्रामा नहीं करो किसी को दुख हो करके। तो फिर हम लोगों को लगा कि हाँ कुछ हुआ करके। तो दादी सावधानी भी देती थी, शिक्षा भी देती थी, प्यार भी करती थी, ये हमने देखा।
आज भी दादी के निमित्त विदेश में एक देश ऐसा है जहां दादी प्रकाशमणि डे भी मनाया जाता है साल में, खास दादी प्रकाशमणि ऑफिशियल। तो दादी ने विदेशों में भी बाबा की ऐसी प्रत्यक्षता की, माना दादी जैसे उनके संकल्प में जैसे सिद्धि दृढ़ता जैसे कहते हैं ना, हर दृढ़ता से दादी हर संकल्प दादी का पूरा होता था।
दादी तो एक महान हस्ती है कि वहाँ हमारे हम जब पीस विलेज गए थे तो वहाँ भी एक दादी के रूप में स्तंभ बनाया है। फिर यहाँ जो अमेरिका में गए वहाँ भी दादी के यादगार में वो पेड़ भी लगाया और उनका डे भी मनाते। तो दादी जी के लिए संसार में सब मेरी दादी मतलब हर जन दादी को प्यार करता है। मुझे एक बात याद आती है, यहाँ अरुण त्रिवेदी जो रावण का पाठ बजा, अरविंद त्रिवेदी आए थे
रामायण में, रावण का पाठ
रामायण का जो पाठ बजाए थे वो आए थे। तो हम मधुबन निवासी सब रावण 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 ऐसे करते थे ऐसे। तो उनको तो पार्टी बजाया था, उनका परिवार भी आया था, बच्चे भी थे ऐसे ऐसे। तो जब वो दादी जी से मिलने गए ऑफिस में तो दादी जी ने कहा आओ आओ लंके जी आओ करके। जैसे दादी जी ने उसको लंके जी पुकारा उसके आंखों में जैसे पानी आ गया। किसी बोलते देखो माँ माँ होती है कि माँ इतना प्यार, मतलब बच्चा कैसे बिगड़ेला बच्चा हो राज, लेकिन वो राजा बेटा ही नजर आता है माँ को। तो ये जो दादी में विषय, इसलिए दादी आपको सब माँ कहते, क्योंकि भले मैं रावण का पाठ किया लेकिन आपने इतना मुझे रिस्पेक्ट से लंकेश बोला, ये मैं कब। तो दूसरे दिन क्लास में वो अनुभव सुनाया उन्होंने। ऐसे एक बार यहाँ संत सम्मेलन मधुबन में हुआ था। तो क्या हुआ, पहले दिन तो उस महामंडलेश्वर शंकराचार्य अपने अपने हमारा सिंगोड़े का आटे का सब ये रोटी चाहिए फलाना ऐसे अपने अपने डिमांड कर दिया सब। अब पहला दिन रिसेप्शन हो गया, सबका स्वागत हो गया। उस रात को क्या हुआ, दादी ने प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, चंद्रमणि दादी, सब दादियों 10-12 दादियां इकट्ठा होके चलो बोलते महात्मा जी से मिल के आते, कैसी व्यवस्था है उनके। तो सुखधाम में सबको तो मैसेज मिल गया उनको, दादी जी आपको गुड नाइट करने आ रहे करके। तो सबके रूम में कैसे आपको तक, बहन के घर में आए हो सब ठीक है, बाबा के घर में आओ आए हो, कुछ तकलीफ तो नहीं है, दादी के पास तो इतना साधन तो नहीं है ना, ऐसे ऐसे करके सबको गुड नाइट करते 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 वो वापिस। दूसरे दिन जब प्रोग्राम शुरू हो गया उद्घाटन आदि, तो एक महात्मा ने शुरू किया कि कोशी संस्था की चीफ कभी किसी को मिलने नहीं जाती और ये दादी जी हमको मिलने गुड नाइट करने शुभ रात्रि करने आई, ये माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। तो दूसरे दिन से वो सब दादी माँ हर भाषण में। अब महात्माओं को तो पता ही है, एक महात्मा ने बोला दादी जी 10 डाकू एक जगह इकट्ठा होके चोरी करते आराम से, लेकिन 10 महात्मा कभी इकट्ठा नहीं होते, लेकिन आपके अंदर कौन सी पावर है जो आपने इतने सारे महात्माओं जगत गुरु महामंडल सबको एक स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया, ये एक माँ ही कर सकती है और कोई नहीं सकता। क्योंकि जब ये बहनें आपकी बहनें हमको राखी बांधने आती थी तो हम बोलते थे वो हमारे कुर्सी को बांध के जाओ करके, और आज आपने इतना हमको पिघला दिया। बोलते कि दादी जी अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आप लोग हमारे पास सेवा के लिए आना, हमारे स्टाफ इतना अच्छा नहीं, आपका स्टाफ कितना अच्छा है करके, निवासी कितने अच्छे काम करते। तो ऐसे बाबा का बहुत बखान करते थे। जैसे गोविंद भाई जी ने बोला कि देश विदेश के जैसे कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ 1983 की बात है बड़ी, तो उसमें इतने बड़े बड़े वीआईपी 250 पत्रकार आए थे उसमें, और उसमें मुख्य संपादक और पत्रकार। तो एक संपादक ने पूछा, दादी जी कभी भी इतने लोग किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते, आपने ऐसे क्या जादू कर दिया, हम तो हमारे पत्रकार को भेजते जाओ नोट करके आ जाओ करके, लेकिन 250 लोग यहां आए, आपने कौन सी जादू कर दिया। तो दादी जी ने कहा, ये दादी बदी नहीं, ये तो बाबा का काम है, वो जादूगर है, जो करना वो करता है। तो दादी अपने ऊपर कभी नहीं लिया कि मैंने क्या उमंग ये हो गया का मैंने का मेरे कारण से वो ऐसे करके। एक विदेश की महिला थी, बहुत बड़ी प्रेसिडेंट थी, वो दादी के पास आई, बोलती दादी आपके पास 3000 गेस्ट, अभी हमारे 500 इधर है, 3000 लोग थे, उसमें तो 1000 सबसे बड़े बड़े लोग हैं, आपको कोई टेंशन नहीं आता है। बोला मुझे क्यों टेंशन, वो तो बाबा का काम है ना, बाबा करा रहे, मेरे को कुछ नहीं,
मैं हेड समझती नहीं तो हेडेक होता ही नहीं।
हाँ, तो उसने बोला दादी जी मुझे आप एक गिफ्ट दो। बोले क्या क्या चाहिए गिफ्ट, जो आपकी मुस्कान है ना वो मुझे दे दो। मतलब इतने लोगों की सेवा करे, आपके चेहरे में कोई शिकंजा नहीं कुछ नहीं, इतना मुस्कुराते हुए ये। तो बोला क्यों नहीं, जरूर, ये बाबा ने मुझे दिया है, आप भी लेके जाओ। तो इस प्रकार की दादी की पर्सनालिटी थी, इतना दादी के अंदर वो चीज थी कि इतना सब कुछ। एक वीआईपी ने पूछा, दादी आपके पास इतने क्या बोलते चेले लोग बोलते उनका अपने भाषा में, इतने चेले लोग हैं, इतने सब स्टूडेंट, आप कैसे संभाल पाते। दादी बोलते चेले नहीं, ये मेरी सखिया है, बहने मेरी सखिया है, मेरी साथी है, हम अभी कोई नौकर चाकर या चेला ऐसा नहीं करते, फॉलोअर्स नहीं होता है, ये जो बहने है मेरी सखिया है और हम मिलजुल के काम करते, ये जो भाई है मेरे साथी है, यह कोई नौकर चाकर नहीं है। तो उसने कहा दादी जी आपको नींद कैसी आती है। तो उसने बोला मेरी तो 4 फैक्ट्री है, एक भाई ने बोला मेरी 4 फैक्ट्री, मेरे को नींद नहीं आती, मेरे पास इतने कामगार कैसे क्या करे। दादी जी ने कहा मैं जैसे बेड पे जाती हूं 3 मिनट के अंदर मैं बाबा के पास मस्त निद्रा में चली जाती हूं। तो दादी मतलब सब कुछ बाबा को दिया, मैं तो कुछ है नहीं, बस बाबा। ऐसे एक बार हमारे पास एक वीआईपी आए थे, तो उन्होंने कहा प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, दादी इतने आपको पालना दे रही है, सबके चेहरे पर इतना मुस्कुराहट है, इतना प्यार है, तो मुझे भी अच्छा लगा, चलो महिमा कर रहे। हम चाय पीते पीते बात चल रही थी हमारी, तो मैंने कहा लेकिन एक बात है, बोला आप शादी क्यों नहीं करते। मैंने कहा कहां से कहां बात निकल दी इधर, शादी क्यों नहीं करते। तो पहले तो ना टाइम नहीं मिलता ऐसे बोल दिया उसका, नहीं नहीं ऐसे नहीं, एक सीरियसली पूछ रहा हूं। मैंने उनको बोला देखो, मैंने कहा बाबा क्या बोलूं इसको, बाबा के साथ बात किया, बाबा इसको क्या बोलूं मैं। बाबा ने मुझे एकदम एक बात टच करा दिया। मैंने कहा आप क्या करते। बोले मैं काफी मेरा बड़ा बिजनेस है, 4-5 फैक्ट्री है, 1000 लोग काम करते हैं। अच्छा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा मैं तो करूंगा शादी जब आप बोल रहे तो, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी आपको। बोले क्या, बोलो बोलो क्या मदद चाहिए आपको। मैंने कहा आप है ना ये सब बंद करो, एक पान पट्टी का दुकान खोल दो। हाँ, मतलब पान पट्टी का दुकान इतना सब छोड़ के। मैंने कहा क्या है इसमें। मैंने कहा मैं यहां देश विदेश की हजारों लोगों की सेवा करता हो, रात दिन इतनी ब्लेसिंग मिलती है, बाबा के सेवा में लगा हूं, और आप कहते एक की सेवा में लग जाओ, तो मैंने कहा मैं करूंगा, लेकिन फिर आपको ये करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, वो चले गए, वो बात बाबा ने इसको ऐसे पंच कर दिया। 2 साल के बाद आया वो बाबा का बच्चा, बैज बीज पहन के एकदम, 2-3 और बड़े बड़े गेस्ट को लेके आया। बोलता है जो आपने मुझे सुना है ना, इनको भी सुनाओ। मैंने क्या सुनाया था, वो फिर उसने मुझे बताया आपने ये बात मुझे सुनाई थी, इसलिए मैं बाबा का बच्चा बना हूं, तो ये बात इनको सुनाओ। तो देखो बाबा कैसे सेवा कराता है, कैसे जादू कराता है। अभी मेरे मन में भी नहीं था ऐसे ऐसे, लेकिन बाबा ने ऐसे टच कर दिया। इसलिए हम बाबा के साथ अगर हम कनेक्शन में रहते तो बाबा हमको समय पे बहुत बड़ा गिफ्ट देते हैं, और बाबा के ऊपर कभी ब्लेम नहीं करना है, बाबा के सदा ही प्यार स्नेह और जो कुछ है साक्षी होके उसको पहले स्वीकार करो। जैसे कल कुछ लोगों को हमने सुनाया था कैंसर का अनुभव, तो बाबा ने जैसे नया जन्म दिया है, ऐसे बाबा के साथ कनेक्ट करो तो बाबा आपको फिर से अच्छी रास्ता भी दिखाएंगे, प्यार भी करेंगे और आपसे सेवा भी कराएंगे।
थैंक यू सुभाष भाई जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से दादी के व्यक्तित्व के हर पहलू को आपने हमें अनुभव कराया। जरूर हम इस बार दादी को सच्ची श्रद्धांजलि यही देंगे कि हम दादी के समान उन दिव्य गुणों को अपने जीवन में लाएंगे, हम भी वैसा ही एग्जाम्पल बनने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सुभाष भाई दिल से। अभी 2 मिनट हम बात किया,
इस सबको बहुत बहुत शुक्रिया है, और हम अभी 2 मिनट बाबा की याद में सच्चे दिल से हमारी प्यारी दादी जी को यही श्रद्धांजलि देंगे। और जो दादी ने जो हमारे साथ जो अनुभव शेयर किया, एक बात रहेगी छोटी सी। एक बार क्या हुआ, हमारे अनाज जो है ना शांति स्तंभ में सुखाया था, 3:30 बजे दिन का टाइम था, एकदम बारिश जोर से आई, तो एक घंटी इमरजेंसी घंटी बज गई, तो सब घंटी बजते सारे मधुबन निवासी इकट्ठा होते और सारा अनाज करीब 100 बोरी थी, और उसमें प्रकाशमणी दादी जी भी हमारे साथ, सब दूसरी दादियां बड़े भाई सब फटाफट हिस्ट्री हॉल में वो सारी 100 बोरी डाली और जोर से इतनी बारिश पड़ी। तो ये दादी ने हमें सिखाया कि कोई भी बड़ा काम हो, कुछ छोटा काम हो, मदद करना है,
सबकी उंगली
लेंगे तो बहुत बड़ा का बड़ा काम हो सकता है। इसी के साथ, इस संकल्प के साथ हम 2 मिनट योग करेंगे और दादी जी को श्रद्धांजलि देंगे और ये बातें हमारे जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। ओम शांति।